खुदावंद की सलामती अब सबके साथ हो। सो आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से, वो कलाम जो हमें तरबियत और नसीहत और सलीका और खुदा बाप की हम्द और सताइश और यीशु मसीह के बारे में इल्म देता है, उस कलाम में से जिसे बाइबल मुकद्दस कहा गया है, जिसे खुदा के सुखन कहा गया है, जिसे खुदावन की सच्चाई कहा गया है, उसमें से सीखेंगे। और जैसे हमने पिछले दिनों में शुरू किया था, 12वीं आयत को, के पालूस रसूल जब इस सच्चाई को लिखता है तो वो बात कहता है, ये हवाला हमें मिलेगा इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 3 बाप, उसकी 12 आयत। तो पालूस रसूल ना सिर्फ कहने वाला है, बल्कि उस भेद और उस सच को और उस हकीकत को अपनी ज़िंदगी में मोहतबर जानता है, उससे अहमियत देता है और अपनी ज़िंदगी में हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना को वो बहुत गहरे तौर पर समझता है। तो वो ईमानदारों के हौसला और उनकी दरेरी और उनको यकीन दहानी के तौर पर तमाम भेदों को बयान करते हुए 12वीं आयत में कहता है, इफ़सियों 3 बाप, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। खुदा का बंदा पालूस जब इस बात को कहता है 12वीं आयत में, तो उसका जो मकसद है इसके पीछे, ईमानदारों को याद दिलाना कि जिसमें, तो सवाल उठता है किसमें? यीशु मसीह में। उस पर ईमान लाने के सबब से हमें क्या हासिल है? दलेरी। और ये बात बड़ी वाजिया है कि पहलवान क्या करता है? पहलवानी। चोर क्या करता है? चोरी। झूठा क्या करता है? झूठ बोलता है। मिस्त्री क्या करता है? मकान बनाता है। हर एक की, क्या कहते हैं, कि सिफ्त का हमें पता चल जाता है उस बंदे के करदार से कि वो कौन सा काम करता है। जैसे जमींदार है वो जमीन का काम करता है। तो पालूस रसूल इस हिस्सा में ईमानदारों को सिखाता है कि तुम्हारे ईमान के बायस तुम्हें यीशु मसीह में क्या हासिल है? दलेरी। यीशु मसीह के बारे में बाइबल मुकद्दस में बहुत से लकब, नाम और बहुत से किरदार बताए गए हैं। तो यीशु मसीह जब कहता है कि जैसा मैं हूं तुम मेरी मानद बनो, पालूस जब कहता है कि जैसे मैं मसीह की मानद बना हूं तुम मेरी मानद बनो, तो वो चाहता है ये नहीं कि हम यीशु मसीह की तरह, क्या कहते हैं, कि कपड़े पहनना या लातीनी या आरामी जुबान बोलना शुरू कर दें। वो सादा तौर पर कहता है उसके करदार, उसकी जात, उसके चलने बैठने को अपनाओ। सो यीशु मसीह दलेर था। यीशु मसीह क्या था? दलेर था। सो यीशु मसीह से हमें क्या हासिल होगी? दलेरी। और ये बात यीशु मसीह ने इब्तदा ही में अपने कलीसिया के लोगों को कह दी थी। और आज मैं चाहता हूं कि इस दलेरी के बारे में सीखें कि ये दलेरी किस किस्म की होती है, क्योंकि लोग दलेर हैं। बहुत दफा लोग ऊंची जगह से छलांग लगाने में दलेर है, कुछ लोग दलेर हैं हथियार चलाने में, कुछ लोग दलेर हैं किसी की रहनुमाई करने में, कुछ लोग दलेर हैं और बहुत से दलेरी के काम करने में। हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें कैसी दलेरी के बारे में सिखाती है। मेरे साथ एक हवाला देखें, क्योंकि ये दलेरी हम में पैदा नहीं होती, इसके लिए हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदा बाप हमें दलेरी बख्श। मेरे साथ देखें नए अहदनामा में से इमाल की किताब उसका चार बाप। इमाल की किताब उसका चार बाप, जब हम पहली चार आयात को देखते हैं तो यहां पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पसे मंजर है वो कौन है? जो शख्स हमें नजर आएंगे वो है पतरस और यूहन्ना। चार बाप की पहली आयत से हम इस पूरे बाप को देखेंगे और इसमें से चीदा चीदा बातों को सीखेंगे कि दलेरी। सो पतरस और यूहन्ना, जब हम चौथे बाप की पहली आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो क्या कह रहे थे? वो यीशु मसीह की मनादी कर रहे थे। इसके बारे में हमें किस तरह पीछे चलेगा पता, जब हम पिछले बाब को पढ़ेंगे। तो पतरस और यूहन्ना ने जो हैकल के अंदर जा रहे थे, वहां पर एक भिखारी को, उस बीमार को जो 40 बरस से वहां पर बैठा हुआ था, चल फिर नहीं सकता था, उससे कहा कि यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर, और वो मजबूत हो गया, खड़ा हो गया और चलना शुरू हो गया। सो ये अजीब मोजज़ा उनके वसीला से हुआ। तो उस दौर के लोग जिनमें काहिन है सरदार, हैकल के काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ाए, किस लिए? ताकि उनको रोकें, ताकि वो तालीम ना दें। उनकी तालीम क्या थी? दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि सख्त रंजीदा हुए कि वो लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मनादी करते थे। यीशु की मिसालें दे देकर कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाया, यीशु मसीह की गवाही देकर तालीम देते थे, और क्या हुआ? बथेरे 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 लोग यीशु मसीह के पास आए। सो पहली चार आयात में हमें जिक्र मिलता है पतरस और यूहन्ना है, और फिर उस दौर के काहिन हैं, सरदार हैं और सदूकी, जो के कह सकते हैं कि उस दौर में जो हैकल की पुलिस या इंतजामिया थी, वो आए और कहने लगे कि तुम इंतजाम को क्यों खराब कर रहे हो। ये उनका झूठ था, क्योंकि पतरस और यूहन्ना सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे? यीशु मसीह की तालीम दे रहे थे। और अगले हिस्सा में हम देखते हैं कि उनको मना किया गया कि इस नाम को दोबारा लेकर तालीम ना देना। लेकिन जो कोई दलेर होता है, जो कोई उस दलेल करने वाले को जानता है जिनसे उसकी दलेरी आती है, तो वो टलते नहीं है। और इसके बारे में हमें बड़ी खूब मिसाल मिलती है पुराने अहदनामा में भी, दानियल के बारे में, कि दानियल और उसके साथ के साथी वो ना डरे ना झिझक ना झिझके, जब नबूकदनज़र बादशाह और दूसरे बादशाह के सामने उनको पेश किया गया कि मेरी प्रस्तुति मेरी इबादत करो, तो उन्होंने दलेरी के साथ कहा कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो इस काबिल है। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जिस खुदा को हम मानते हैं वो ऐसी कुदरत रखता है कि हमें बचा सकता है, और खुदा जो कि बहुत ही हलीम, मोहब्बत करने वाला और गयूर, गयूर का मतलब गैरत वाला खुदा है, बहुत ही सादक है, रानी के रास्तबाज है, सच्चा है, जिसमें कोई भी नेकी, कोई भी मुकर, कोई भी फरेब की बात नहीं पाई जाती। जब लोग उस पर एतकाद करते हैं तो वो आसमान से निगाह करता है और कहता है कि ये बंदा, ये बंदी मुझ पर एतकाद करके दलेरी, मेरी दलेरी को इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं आसमान से उतरूंगा और इसे छुड़ाऊंगा। और उस आग में ऐसा ही हुआ, उन तीनों को बचा लिया। उस शेरों की गार में ऐसा ही हुआ कि खुदा का फरिश्ता आया और शेरों के मुंह बंद कर दिए। सो इस जगह पर हम देखते हैं जब पतरस और यहन्ना ने उनको बड़े वाजिया तौर पर कहा, 10वीं आयत को देखते हैं, कहते हैं, तो तुम सब और तुम सब और इसराइल की सारी जमात को मालूम हो के यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने सलीब दिया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। वो उसे रोकते थे, वो कहते थे कि ये शख्स, हमने कोई गुनाह नहीं किया, इसने शफा पाई है, तो किसके नाम से, जिससे तुमने मसलूब किया था, और उसका नाम यीशु नासरी है। बाइबल मुकद्दस बड़ी ही शानदार बात से हमें नवाजती है, और वो बात क्या है कि यीशु मसीह का नाम। हम बहुत दफा जब लोगों से बात करते हैं तो हम यीशु मसीह का नाम अपनी बातों से काट देते हैं, ताकि कोई हमें कोई बात ना कर दे। लेकिन ये लोग पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं कि मकसद के साथ अपनी मर्जी से बगैर खौफ के दलेरी के साथ इस्तेमाल करते हैं इस नाम को, जिस नाम से नजात मिलती है। कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने सलीब दी और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। और आपको पता होगा कि उन्होंने क्या कहा था कि पतरस ने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, मगर जो कुछ तुझे दे सकते हैं वो ये है कि यीशु मसीह के नाम से चल फिर। सो हमें यीशु मसीह का नाम क्या कहते हैं कि इस्तेमाल करने की जरूरत है अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में, तभी हमारी पहचान होगी कि हम कौन हैं। हिंदू क्या करते हैं, राम 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 राम, क्यों? क्योंकि वो उसके मानने वाले हैं। और हम क्या करते हैं, हालेलुया कहेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, यीशु मसीह का नाम लेंगे तो पता चलेगा कि ये यीशु मसीह का मानने वाला, नहीं तो वो कहेंगे कि जी ओ अपना कहते कि तेरा वाले बाबे का मनन आला। सो यीशु मसीह का नाम इन्होंने इस्तेमाल किया, और क्या कहा 11वीं आयत में, ये वही पत्थर है जिसे तुम ममारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। सो यीशु मसीह नाम ना के सिर्फ हमें गिरजा घर में, ना के सिर्फ घर में, बल्कि जहां कहीं भी हों, ये हमारी पहचान है कि यीशु मसीह के लोग, और यीशु मसीह के जो ऊपर ईमान रखते थे, इमाल ही की किताब में पता चलता है कि सबसे पहले जो अंतातिया में ईमान लाए वो क्या कहलाए, मसीही कहलाए। मसीह पर ईमान रखने वालों को मसीही कहा गया है, जिसमें इंग्लिश का लफ्ज क्रिश्चियन है और उर्दू का लफ्ज मसीही। तो इन्होंने बड़ी दलेरी से, बड़े खड़ाके के साथ सदूकियों को, काहिनों को और हैकल के जो सरदार थे उनको कहा कि तुमने उसे मसलूब किया, वो मुर्दों में से जी उठा खुदा की कुदरत से, और उसी के नाम से ये मौजजा हुआ है, क्योंकि वही तुम्हारी निजात का वसीला है, इसलिए हमसे पंगा ना लो। और 13वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी, क्या देखी, दलेरी देखी, ये नहीं कि वो चूहों की तरह छुपते फिर रहे थे, नहीं, जब पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़े और ना वाकफ, अनपढ़ और ना वाकफ आदमी है, तो ताजुब किया, हैरान हुए कि ये बातें, ये तालीम की सच्चाई किस तरह इनको मालूम हो गई, ये कैसे जानते हैं इन भेदों को, ताजुब किया। फिर उन्होंने पहचाना के ये यीशु के साथ रहे हैं, ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु मसीह का नाम कलाम खुदा बड़ी ही अच्छी वजह से इस्तेमाल किया गया। वो कह सकते हैं कि फलां के साथ या ये भी कहा जा सकता था कि ये फलां फलां के साथ रहे हैं, लेकिन वाजिया तौर पर कहा गया है फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके, मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर निकाल जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक अजीब मोजज़ा, उनसे एक ऐसा वाकया हुआ है जो इंसान से नहीं हो सकता, ऐसा मोजज़ा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा की कुदरत से वकूं में आ सकता है। सो, इन ईमानदारों की दलेरी कहां से आती थी? क्योंकि वो भी हम सब की तरह खून और गोश्त के थे, वो भी हमारी तरह डरते थे, वो भी हमारी तरह घबराते थे, उनको भी फिक्र थी, उनमें भी बहुत सी कमजोरियां पाई जाती थी जैसे हमें पाई जाती, लेकिन उनकी दलेरी कहां से आती थी? यीशु मसीह की तरफ से, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कहा था कि मैं जाता हूं और फिर वापस आऊंगा, लेकिन रूहुल कुद्दस तुम पर नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और ऐसी ही बात हमें नजर आती है कि उनकी कुव्वत और ताकत कहां से आती थी। और ये बात वाजिया है खुदा के कलाम में, यर्मिया 33:3 में, जब यर्मिया कैद खाने में था, जब सताया जा रहा था, जब वो दुख में था, परेशानी में था, लोग उसे ठट्ठों में उड़ाते थे, लोग उसे कहते थे कि तू दीवाना है, तो उसने कैद खाना में से ये दुआ की और खुदावन ने उसे जवाब दिया, यर्मिया 33:3 में, कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करूंगा जिन्हें तू नहीं जानता। पतरस जब कैद में था तो उसने दुआ की तो उसकी दुआ का जवाब मिला। सो, यहां पर ये लोग जो ईमानदार हैं ये भी घबरा जाते थे, डर जाते थे, परेशान हो जाते थे, और इनकी दुआ क्या थी? मेरे साथ देखें, हमें भी इनसे सबकत, इनसे नमूना लेने की जरूरत है। जब वो उनकी रहस्य से, उनकी ग्रिफ से छूटकर वापस आए तो लिखा है 23वीं आयत में, ये 40 साल का मौजदा जो बंदा था शफा पा गया, तो उनकी तफशीश हुई, लोगों ने बातें बनाई, तो 23वीं आयत में लिखा है, इमाल 4 में, वो छूटकर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिन और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। सब कुछ उन्होंने बयान किया कि क्या हुआ, क्या वाकया हुआ, किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अजीब मौजज़ा वहां पर किया और किस तरह उसके नाम से अब खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। तो 24वीं आयत में लिखा, जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से कहा, ए मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूहुल कुद्दस के वसीला से हमारे बाप अपने खादम दाऊद की जुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातल ख्याल किए खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ मुखालफत को जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए। ये अनपढ़ लोग जो पढ़ नहीं सकते थे, जिनको कोई मालूमात नहीं थी, यीशु मसीह के साथ रहते हैं और सीखा है, और रूहुल कुद्दस ने उनके जबानी जबूर 2 का जो हवाला कहा गया था कि मसीह के खिलाफ बहुत से बादशाह और सरदार और काहिन और हुकूमत वाले उठ खड़े होंगे और खुदावन जो आसमान का खुदा है उन पर हंसेगा और उनका मजाक उड़ाएगा। और क्या लिखा है 27वीं आयत में, क्योंकि वाकया ही तेरे पाक खादम यीशु के बरखिलाफ जिसे तूने मसा किया हेरोदीस और पेंतुस पिलातुस गैर कौमें और इसराइल के साथ इसी शहर में जमा हुए हैं यीशु मसीह की मुखालफत के लिए। और लिखा है 28वीं आयत में, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहराया गया था वही अमल में लाएं। और दुआ करते हुए वो बात इसको जाहिर कर देते हैं, अब ए खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को तौफीक दे के वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाएं, कमाल दलेरी के साथ सुनाएं। हमें इससे ये बात सीखने को मिलती है कि हम जब घबराए हों, जब डरे हों, जब परेशान हों, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें दलेरी बख्श, और तू अपने हाथ और तू अपना हाथ बढ़ा और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मोजज़े और अजीब काम ज़हूर में आएं। जब वो दुआ कर चुके तो रूहुल कुदस नाजल हुआ। सदुआ जिसके बारे में पलूस ने कहा कि यीशु मसीह के नाम में हमें दलेरी और पूरा यकीन हासिल है कि हम खुदा की हजूरी में जा सकते हैं। सदुआ बहुत ही गहरा और अहम जुज है मसीही जिंदगी में। दुआ के बगैर जिंदगी क्या है, बहुत ही सूनी सूनी और बेकार है। सो आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ करें।